ओम शांति। हमारे इस स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत सेमिनार के आज ऑफिशियली पहले सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी उपस्थित है, जो एक वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका है। आप 1980 से ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। 1985 में आपने यूएन के द्वारा जो इंटरनेशनल ईयर फॉर यूथ अनाउंस हुआ था, उसमें जो पदयात्रा हुई थी, भारत एकता युवा पदयात्रा, उन्होंने आपने पार्टिसिपेट किया था। और बॉम्बे टू दिल्ली आप गए थे और उन्होंने आध्यात्मिकता को गांव और शहर में उसका सार्थक महत्व समझाया था। आप, जैसे मैंने बताया, आप वरिष्ठ राजयोग टीचर है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी आप बहुत सुंदर और एकदम आपको एकदम सरल भाषा में जिसको कहते हैं वो ट्रेनिंग आप करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इनविटेशंस मिले हैं और आप वहां जाके मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप की बहुत सुंदर ट्रेनिंग करवाते हैं। आपको हाल ही में हॉल ऑफ फेम अवार्ड फ्रॉम इंडियन पीआर भी मिला हुआ है, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दी।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज आप सबके बीच में आकर के कुछ इनसाइट्स शेयर करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली समझती हूं। ये 3 दिवस की रिट्रीट स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्णिम भारत, मैं समझती हूं कि ये स्वप्न या एक संकल्पना साकार करने के लिए युवाओं में जितनी पोटेंशियल है उतना और किसी में नहीं है। और इसीलिए आप सभी बड़े रुचि के साथ ही इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सभी यहां आए, कल से आए, कई लोग परसों से आए होंगे, लेकिन ज्ञान सरोवर एकेडमी में आने के बाद आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? हाँ, पीसफुल एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन है, स्वच्छता। यहां की स्वच्छता हर एक को आकर्षित करती है और यहां की स्वच्छता होने के कारण ही वो शांति के वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। ये स्वच्छता के अंदर ही एक प्रकार का मैग्नेटिक पुल है और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये अभियान सारे भारत के लिए छिड़ा है कि स्वस्थ स्वच्छ भारत हो। और ये स्वच्छ भारत में अवश्य एक बाह्य स्वच्छता की बात की गई है, लेकिन आज हम देखते हैं कि स्वच्छता का एक दूसरा पहलू और वो है आंतरिक स्वच्छता। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर स्वच्छता होगी तो बाह्य वातावरण के अंदर, बाह्य एनवायरमेंट के अंदर भी स्वच्छता लाना शायद सहज हो जाएगा। स्वच्छता के लिए वैसे भी कहा गया है दुनिया में कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता हमें भगवान के, परमात्मा के समीप ले आती है। और इतना ही नहीं, लेकिन जितना जितना हम ईश्वर के सानिध्य में चले जाते हैं उतना ही उसके आशीर्वाद के पात्र हो जाते हैं। भगवान भी स्वच्छता को पसंद करते हैं और जिनका दिल साफ है, मन स्वच्छ है, वो स्वतः उसके आशीर्वाद के पात्र बन ही जाते हैं। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है यहां पर कि एक बार एक राज्य था, राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी अपनी झोपड़ी बना करके रह रहे थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे और हमेशा तपस्या के अंदर रहते थे। उस राज्य से जो लोग आते थे जाते थे महात्मा जी को देखते थे तो स्वाभाविक है कि उनका मस्तक झुक जाता था, प्रणाम करते थे। और महात्मा जी का भी अगर ध्यान चला गया तो वो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। सिद्ध महात्मा होने के कारण जिसके मन के अंदर जो मनोकामनाएं होती थी पूर्ण हो जाती थी। किसी को अगर बीमारी है तो स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता था, किसी को कोई बात की कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी। तो नेचुरल है कि वो लोग जब राज्य में आते थे तो समाज के अंदर बातें करने लगे कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा रह रहे हैं बड़े सिद्ध महात्मा हैं और उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये आवाज आग की तरह फैलने लगा और धीरे धीरे वहां के राजा के कान तक भी ये बात पहुंच गई। उस राज्य का राजा बड़ा लालची था। जब उसने ये बात सुनी तो उसने सोचा भाई ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहना चाहिए, उनको तो अंदर बुलाना चाहिए, राज्य के अंदर आकर के रहे, लोगों का कल्याण करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे तो लोग हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो एक लालच आया उसके अंदर। तो उसने अपने मंत्री जी से कहा कि क्यों नहीं आप चले जाओ और महात्मा जी से निवेदन करो कि वो राज्य की सीमा के बाहर न रह करके राज्य की सीमा के अंदर आ जाए। उसके लिए उनको जो भूमि चाहिए उपलब्ध करा देंगे, जितनी चाहिए उतनी उपलब्ध करा देंगे और उस भूमि पर अपना आश्रम बनाने के लिए जितने लागत चाहिए, सोना मोहर चाहिए, वो भी उपलब्ध करा देंगे। मंत्री जी को जब भेजा ये संदेशा लेकर के, मंत्री जी वहां पहुंचे, महात्मा जी के सामने जाकर के बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और फिर राजा का संदेशा दिया कि हे महात्मन, हमारे राजा का निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर न रह करके राज्य की सीमा के अंदर आकर के रहो। आप लोगों का कल्याण करिए, राज्य का कल्याण करिए, उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए जितनी भूमि चाहिए उपलब्ध करा देंगे और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जो सोना मोहर चाहिए वो भी हम दे देंगे। महात्मा जी ने कहा ठहरो और अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाकर के कमंडल लेकर के आए और मंत्री जी से कहा चले। मंत्री जी ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महात्मा जी इतना जल्दी तैयार हो जाएंगे। कहा चलिए राजा के पास चलते हैं। अब सैनिकों को आगे भेज दिया राजा को इन्फॉर्म करने के लिए कि महात्मा जी पधार रहे हैं। राजा स्वयं होकर के आगे आए, उसको रिसीव किया, बड़ा सम्मानता पूर्वक उनको रिसीव करते हुए अंदर महल में ले गए, आसन ग्रहण करवाया और फिर महात्मा जी से अपना निवेदन कहा कि आप राज्य की सीमा के अंदर आके रहिए, उसके लिए जितनी सोना मोहर चाहिएगी हम आपको दे देंगे। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और राजा से कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दीजिए। राजा ने जैसे कमंडल उठाया देखा कमंडल बहुत गंदा था, इतना गंदा था, जाले लगे हुए थे, बांस आ रही थी, कितने दिनों का पड़ा होगा, इतना बदबू मार रहा था। राजा ने अपने दास दासियों से कहा ये कमंडल साफ करके ले आइए। जब साफ करके ले आए राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उसको पोछा अच्छी तरह से और उसके बाद उसमें सोना मोहर भर करके महात्मा जी को दिया और फिर यही अपेक्षा रखी कि अब महात्मा जी को इतनी सोना मोहर दिया है तो जरूर कोई आशीर्वाद तो बरसा ही देंगे। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोला। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, एक भी आशीर्वाद नहीं दिया मुझे, ये तो मालूम था सिद्ध महात्मा है, जो बोलेंगे सच वचन हो जाएगा। तो फिर आखिर महात्मा जी से कह ही दिया कि महात्मा जी कोई आशीर्वाद तो दे दीजिए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे। दोबारा कहा हे महात्मा जी आपकी कोई कृपा वृष्टि हमारे पर हो जाए। जब ये बात कही तो महात्मा जी ने कहा पहले पात्र साफ करो। कहा मैं समझा नहीं। तो कहा जिस तरह आपको कीमती सोना मोहर डालनी थी और ये पात्र गंदा था तो साफ करवाया आपने और साफ स्वच्छ करके फिर उसके अंदर ये कीमती सोना मोहर डाली, ठीक इसी तरह आशीर्वाद भी कीमती होता है। आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो मन का पात्र पहले साफ करो। जब तक मन का पात्र साफ नहीं है कृपा वृष्टि नहीं हो सकती है। इसी तरह भगवान की कृपा वृष्टि को प्राप्त करना है तो मन का पात्र साफ करना जरूरी है। मन का पात्र थोड़ा गंदा हो गया है आज की दुनिया के अंदर। कौन सी गंदगी आ गई है हमारे मन के पात्र के अंदर? गंदगी कौन सी आ गई है? क्या कहेंगे? लालच आ गई है, और क्या आ गया है? क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, और तृष्णाएं आ गई है, और ईर्ष्या आ गई है। मन के पात्र के अंदर बहुत कीचड़ा इकट्ठा हो गया है और उसमें भी नेगेटिविटी का कीचड़ा बहुत ज्यादा है। कई प्रकार की नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव मनोवृत्तियां, नेगेटिव बातें इतनी भर के रखी है अंदर में, तो मन का पात्र साफ करना जरूरी है। इसीलिए शायद यूथ विंग ने ये थीम जो रखा है बहुत सोच समझ करके रखा है कि ये 3 दिन के अंदर वो आपके मन के पात्र को क्या करेंगे, साफ करने का प्रयत्न करेंगे और जितना यहां से जब जाने का वक्त आए महसूस करेंगे आप कि मन का पात्र थोड़ा बहुत तो साफ होगा ही कि नहीं होगा। अच्छी बातें सुनेंगे तो अवश्य साफ तो होगा ही। हमारी दादी जी बहुत सुंदर बात कहती है, 3 बात हमेशा हम लोगों को कहती है और वो 3 बातों में सबसे पहली बात कहती है कि हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, दूसरा बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए और तीसरा दिल साफ होना चाहिए। जितना मन स्वच्छ बुद्धि स्पष्ट क्लैरिटी है, फोकस हमारा क्लियर है और दिल साफ है प्योर है, उसमें कोई बुरी भावनाएं नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर हर प्रकार की चैलेंजेस में भी पास हो जाते हैं, सहज उसको पास कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का युग है ही चुनौतियों भरा युग, जहां हर वक्त हर एक के सामने कोई ना कोई चुनौती आती रहती है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा कि चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, हर एक के सामने आज चुनौती कोई ना कोई रूप से आती रहती है, बट फॉर सम दे ओपन द डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। वही चुनौती नए अवसर के द्वार खोल देती है, और किसी किसी को यही चुनौती द्वार खोलने के बजाय पछाड़ना शुरू करती है। तो किसके लिए ये द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ने वाला अनुभव कराती है? चुनौती हरेक के लिए है। बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। राइट डिसीशन एट द टाइम ऑफ चैलेंजेस, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। एक के बाद एक अवसर के द्वार खुलते जाते हैं, लेकिन जो चुनौती के वक्त गलत डिसीजन ले लेता है उसके लिए द्वार बंद रहता है, और जीवन में पछाड़ने वाला अनुभव होता है कि जैसे परिस्थितियों ने पछाड़ा, समय ने पछाड़ा, और उसका कारण है गलत निर्णय, जो बाद में व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़ता है और सोचता है अगर उस समय थोड़ा ध्यान दिया होता था, मन की एकाग्रता होती थी, तो शायद आज मुझे ये दिन देखने न पड़ते। तो चुनौती के वक्त सही डिसीजन कौन लेता है? जिसका फोकस क्लियर है, बुद्धि स्पष्ट है, जो कहा ना मन स्वच्छ, उसमें नेगेटिविटी ना हो, व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो, बुद्धि स्पष्ट है और दिल साफ है। रॉन्ग डिसीजन इसीलिए लिया जाता है कि जब इमीडिएट प्रेजेंट को देख करके कोई स्वार्थ या लालच में आकर के हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तब एक दूरांदेशी होकर के हम जब निर्णय नहीं लेते हैं, तब वही परिस्थिति पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। चुनौतियों के युग में हर पल चुनौती नई नई तरीके से हमारे सामने आती है, और उसके लिए ये तीन चीज जो दादी जी हमेशा हम सभी को कहती है, मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट यानी क्लियर फोकस, जितना क्लैरिटी है अंदर की उतना हर डिसीजन क्लियर होगा, और तब व्यक्ति को पश्चाताप करना नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन के अंदर वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो चैलेंजेस आती है, अपॉर्चुनिटीज के जो द्वार है उसको खोलने के लिए, जैसे एक कैमरा क्लिक करते हैं ना, तो उस समय एपरेचर खुलता है और बंद हो जाता है, उतना ही होता है, इतना ही टाइम होता है। और उस समय अगर कोई हाथ पैर इधर उधर कर रहे हैं तो फोटो कैसे आता है? ठीक वही हाल जब चुनौती हमारे सामने आती है और उस समय डिसीजन लेने का जो समय होता है वो उतना ही होता है, और उसी समय अगर रॉन्ग डिसीजन लिया जाए तो उसके बाद उसको करेक्ट नहीं कर सकते, वो फोटो खींच गया, वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए बंद हो गई। इसीलिए पहले से ही जितना स्वच्छ, स्पष्ट और साफ है उतना डिसीजन हमारा एक्यूरेट है, तो जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अंतर मन जितना व्यर्थ और नकारात्मकता से मुक्त है, उस किचड़े को हमेशा हम दूर रखें, नहीं तो नेगेटिविटी माइंड को इतना पोल्यूट कर देती है इतना मन को अशुद्ध बना देती है, अस्वच्छ बना देती है कि उस व्यक्ति के विचारों को भी सुनेंगे तो दूसरे को लगता है कैसे विचार है इस व्यक्ति के, इतने गंदे विचार, इतने बुरे विचार, है ना। तो उस व्यक्ति के पास जाने का भी हमें मन नहीं करता है। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, अरे बाद में पता चला इस व्यक्ति के अंदर इतना मैलापन है, बाहर से बड़ी स्वच्छता वाली बातें करता है लेकिन अंदर में इज नॉट प्योर एट हिज हार्ट, एंड सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम, सो वेयर आर वी कंफर्टेबल। हम कंफर्टेबल कहां है कि जहां विचारों की शुद्धि है, वाणी की शुद्धि है, व्यवहार की शुद्धि है, वहां कंफर्टेबल फील करते, भावनाओं की शुद्धि है, जहां ये सब लेवल पर स्वच्छता आ जाती है वहां कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं तो व्यक्ति धीरे धीरे जैसे ही उसको पहचान लिया उसका मन बड़ा मैला है, उसके विचार बहुत गंदे हैं, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको कहने की आवश्यकता नहीं रहती है लेकिन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, दूर होते जाते हैं, और इतने दूर हो जाते हैं जो बाद में कभी मिलते भी है तो भी सोचते कहां मिल गया रास्ते। दूसरा जब पूछता है अरे भाई तू इतना नजदीक था उसके दूर कैसे हो गया, तो क्या कहते उसके लिए, अरे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, यू नेवर नो हिज इंटेंशंस, है ना, उसके इंटेंशंस में वो स्वच्छता ही नहीं थी, प्योरिटी नहीं थी, इसीलिए बड़ा डेंजरस व्यक्ति, उसको क्या कह दिया, डेंजरस पर्सनैलिटी। और कोई व्यक्ति भोला होता है, जो अंदर है वही बाहर है स्वच्छ, उसको क्या कहेंगे, अरे भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर, कोई डुप्लीकेसी नहीं होंगी, कोई उसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, उस व्यक्ति को कहा स्प्लिट पर्सनैलिटी। कौन अच्छा लगता है, भगवान का बंदा या डेंजरस व्यक्ति, कौन अच्छा लगता है, भगवान का बंदा अच्छा लगता है ना। तो जहां स्वच्छता है, नेचुरल है, वहां हम अट्रैक्ट होते हैं, उसको कहा ही गया भगवान का बंदा और वो उसको कहा बड़ी डेंजरस व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, दो कदम दूर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा, कहां नुकसान कर देगा पता नहीं चलेगा। तो मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिविटी जितनी ज्यादा है, ये किचड़ा अगर होगा तो हम अंदर से स्वच्छ नहीं है, और उस कारण से बुद्धि स्पष्ट नहीं है, हमेशा कोई ना कोई उसकी प्लानिंग चलती रहती है, उसको कैसे धोखा देना, उसको कैसे करना, उसको कैसे, तो उसका उसकी बुद्धि जो है उसका कॉन्शियस क्लियर नहीं है, और कॉन्शियस ही क्लियर नहीं है, उसका विवेक स्पष्ट नहीं है, बुद्धि स्पष्ट नहीं है, तो वो जो डिसीशन लेगा वो डिसीशन में भी क्लैरिटी नहीं, और इसीलिए उसके बोल और कर्म में कंफ्यूजन, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, उसमें इतना कंफ्यूजन होगा कि खुद ही कंफ्यूज होता रहेगा, मैंने क्या बोला और मैं क्या कर रहा हूं, समझ में ही नहीं आता है। पिछले दो दिनों से आप यहां हैं, और कुछ सीखा ना सीखा हो, एक शब्द तो सीख ही लिया होगा, एक शब्द तो सीख ही लिया होगा अब तक, कौन सा, ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है, ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर है, अ उ म, ए यू एम इंग्लिश में भी कहते हैं। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण, और म का मतलब है मन के विचार। A for actions, U for utterance, M for mind. जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, लेकिन आज ये तीन भी हार्मनी में नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। मन कुछ अच्छा सोचता है, एक्सप्रेस करने जाते हैं कुछ और ही निकल जाता है, फिर हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, है ना। कितना कंफ्यूजन है अंदर ही, और जब अंदर कंफ्यूजन है, व्यक्ति की लाइफ में कंफ्यूजन है, तो उसका हर डिसीजन कैसा होगा, तो परिस्थिति कितनी कॉम्प्लिकेटेड उसके सामने जो आती है, वो कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियों के प्रति उसका दृष्टिकोण सही नहीं है, पॉजिटिव न होने के कारण उसके डिसीशंस राइट नहीं है, डिसीशंस गलत हो जाते हैं, और जहां डिसीशन ही गलत हो गया तो टाइम वेस्ट। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो हमारा है वो सही नहीं होता है लाइफ में, इसीलिए कहते हैं इतनी कॉम्प्लिकेशंस आज हो गई है, व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी हो गई है, कभी कभी वो खुद को भी नहीं समझ पाता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्यों ऐसा चल रहा हूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, उसको खुद को भी पता नहीं है। तो लाइफ में सक्सेस हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेस न मिलने का कारण ये स्टेप्स है। शुरुआत होती है मन स्वच्छ नहीं, किचड़ा है नेगेटिविटी का, तो बुद्धि क्लियर नहीं, तो कंफ्यूजन इतना जीवन के अंदर भर जाता है, और तब हमारा दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन रॉन्ग परसेप्शन होता है, हरेक को देखने का नजरिया हमारा गलत होता है, और जब परिस्थितियों को भी देखने का नजरिया गलत होता है तो जो करते हैं वो टाइम वेस्ट होता है, टाइम सफल नहीं होता है। इसीलिए स्वच्छता बेस में, यानी आरंभ में ही अगर स्वच्छता है तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ाना बहुत सहज है। संबंधों में, ये तो हुई परिस्थितियों के साथ की बात, लेकिन संबंधों में स्वच्छता माना हम एक दूसरे को जब संबंध में आते हैं तो जो है जैसा है वैसा बिना किसी शर्त के या भय के उसको स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस, और एक दूसरे के समीप आना, ये है हमारे व्यवहार की स्वच्छता। कि जहां हमारा संबंधों में जो व्यवहार है उसमें स्वच्छता माना, जो है जैसा है, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन वो उसको स्वीकार कर लेना, उसके खाली अच्छाइयों को स्वीकार करना नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई कमी कमजोरी भी अगर है उसको भी हम स्वीकार करते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी शर्त के, और एक दूसरे के समीप आते हैं, और दिल साफ होने के कारण वो सर्व के स्नेही बन जाते हैं, सबको, सबके दिलों को जीत लेता है, और तभी वो सबके विश्वास का पात्र बन जाता है। तो दूसरे के दिल को जीतना हो, विश्वास पात्र बनना हो, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आंतरिक स्वच्छता। जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं है तब तक हम दिलों को जीत नहीं सकते हैं। भारत के लिए तो ये गायन है कि हमने दिलों को जीता है, वो कोई कवि का गीत के शब्द है ये, कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति कैसी है कि हमने तो अनेकों के दिलों को जीता है। और ये दिलों को जीतने का कारण क्या था कि उस समय भारत इतना स्वच्छ था, लोग इतने स्वच्छ थे, प्योर थे, इसीलिए वो दिलों को जीत सकते थे। आज तो एक परिवार के अंदर रहने के बावजूद भी क्या होता है, परिवार में रहने के बावजूद भी एक दूसरे के दिलों को समझ नहीं पाते हैं, जीतना तो बहुत दूर, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, इतना हमारे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। और इसीलिए कहा कि विश्वास पात्र, विश्वास जैसे संबंधों से खत्म होता जा रहा है, संबंधों में वो विश्वास नहीं रहा। अब अगर देखा जाए स्वच्छता के कई रूप है, कौन से रूप है, स्वच्छता के बहुत सारे रूप है, कौन से रूप है आप बता सकेंगे, कितने रूप है स्वच्छता के, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता, और व्यवहार की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, लेकिन हर बार वो अलग एक स्वरूप में आ जाता है। जब हम कहते हैं मन की स्वच्छता यानी विचारों की स्वच्छता, तो जब विचारों में स्वच्छता, मन के अंदर स्वच्छता आ जाती है, तो मन कैसा हो जाता है? निर्मल, निर्मल झरने की तरह। इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, द एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग। इतना निर्मल मन हो जाता है, तो निर्मलता ये भी स्वच्छता का रूप है। अच्छा, वाणी की स्वच्छता जब आ जाती है, तो जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और वही अगर हम करते, तो वाणी की स्वच्छता जहां होती है, वहां उसका स्वरूप कौन सा होता है? मधुरता और सत्यता। उसके हर बोल में सच्चाई होगी। इसीलिए कहते हैं सच्चाई सफाई। सत्यता का स्वरूप ले लेती है वो, ये भी स्वच्छता है। तो वाणी की स्वच्छता माना मधुरता और सच्चाई, एक एक शब्द के अंदर सच्चाई समाई हुई हो, जहां हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप में सिद्ध है। अच्छा, कर्म में स्वच्छता, दिल में स्वच्छता, तो दिल साफ पवित्र, ये दिल की स्वच्छता है। तो जहां पवित्रता है, ये भी स्वच्छता का ही रूप है। मधुरता है, सत्यता है, ये सब स्वच्छता का ही स्वरूप है। तो दिल की स्वच्छता माना ही पवित्रता, पवित्र भावनाएं, प्योर फीलिंग्स जिसको कहा जाए। अच्छा, कर्म की स्वच्छता में क्या होगा? कर्म की स्वच्छता जहां है, वहां सभ्यतापूर्ण हर कर्म होगा, किसी को हर्ट नहीं होगा उसमें, सभ्यता है ना, डिसिप्लिन में होंगे, और डिसिप्लिन पूर्वक अपनी इंद्रियों को चलाते हुए कर्म करेंगे। तो सभ्यता जो है, ये भी स्वच्छता का ही एक स्वरूप है, ये कर्म की स्वच्छता है। व्यवहार की स्वच्छता का रूप कौन सा होगा? व्यवहार में जब स्वच्छता आ जाती है, तो वहां शालीनता आती है, यानी रॉयल्टी। व्यवहार के अंदर रॉयल्टी जब समा जाती है, तो ये व्यवहार की स्वच्छता का रूप है। उसके बाद दृष्टि की स्वच्छता माना, जहां हर एक की अच्छाई नजर आए, किसी की बुराई नजर नहीं आती उसमें, ये दृष्टि की स्वच्छता है। हर एक के अंदर भले कमी कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सदा सबकी अच्छाई नजर आए, उसको महत्व दे। बहुत सुंदर एक बात याद आती है मुझे यहां पर, कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान को प्रसन्न करके उसने, जब भगवान सामने आए, तो भगवान ने कहा मांगो, जो मांगो मैं दूंगा तुम्हें। तो उसने भगवान से कहा, भगवान मैं सदा सुखी होना चाहता हूं, दुखी होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी कोई विधि बताओ कि मैं सदा सुखी रहूं, दुखी रहूं ही नहीं, जीवन में कभी दुख का एक्सपीरियंस ना करूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, सदा सुखी होने का मंत्र दे देता हूं। तो भगवान ने क्या किया, कावड़ दिया। कावड़ मालूम है ना, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को बिठा के ले जाते थे, तो उसको कावड़ दिया। और कावड़ देकर के कहा, एक तरफ सफेद कपड़ा लपेटा था, एक तरफ काला कपड़ा लपेटा हुआ था। तो भगवान ने कहा ये कावड़ लेकर चलना जीवन में, और जो काला कपड़ा है ना वो पीछे रहना चाहिए, और सफेद कपड़ा है उसको आगे रखना, और जीवन में चलते चलना, तो सदा सुखी रहेगा। तो उसने भगवान से कहा, भगवान ये काला कपड़ा क्या है, सफेद कपड़ा क्या है? तो भगवान ने उसको कहा कि जीवन की यात्रा में तुम चलते चलोगे, तो बहुत उससे तेरी मुलाकात होगी, बहुत मनुष्य से मिलना होगा, और हर मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन जब भी तुम किसी से मिलो, और अगर पहले ही उसमें तुम्हें अगर कोई बुराई नजर आए, तो बुराई को पीछे डाल देना, ये काला कपड़ा जो है ना उसमें डाल देना, और अच्छाई को हमेशा आगे रखना, सामने रखना, और अच्छाई के आधार पर ही तुम व्यवहार करना तो सदा सुखी रहेगा। उसने कहा ठीक है। और मनुष्य ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, कावड़ लेकर चलता चला जीवन के अंदर, और जैसे ही जीवन के अंदर ये कावड़ लेकर के चलता चलने लगा तो काला कपड़ा पीछे रखा, सफेद कपड़ा आगे रखा, जो भी मिलता था अगर उसकी कोई बुराई नजर भी आए तो उसको पीछे डाल देता था, और सफेद कपड़े को यानी अच्छाई को हमेशा सामने रखते हुए उसके साथ व्यवहार करता था। ये जीवन की उसने पॉलिसी अपना ली, सदा सुखी रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सोया हुआ था, अचानक भूकंप आया और भूकंप में हड़बड़ा करके उठा तो गलती से वो कावड़ उल्टा रख दिया, काला कपड़ा आगे हो गया, सफेद कपड़ा पीछे हो गया, तब से चलना चालू किया, उसको ध्यान में ही नहीं आया। और आज वही हमारे सामने है, जीवन के अंदर ये कावड़ काला कपड़ा हमेशा आगे रहता है, सफेद कपड़ा पीछे रहता है। अगर किसी की अच्छाई दिखाई दे या कोई वर्णन भी करता है तो क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, फालतू की बातें हैं, पीछे डाल दो, और बुराई है तो सामने रखते, अच्छा ये बुराई है उसकी, ये बुराई है, तब से लेकर के हम जीवन में दुखी होना शुरू हो गए हैं। अब हमें वक्त फिर से, शायद ये वर्कशॉप के माध्यम से वक्त आया है पुनः अपने कावड़ को चेंज करने का। क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां से जाने के पहले ही अपना कावड़ चेंज कर लेंगे, सफेद कपड़ा आगे और काला कपड़ा पीछे। जो भी लोग मिले नजर, उनकी बुराई अगर नजर आए भी तो पीछे डाल देना। उनके कहने का भावार्थ कि उनकी बुराइयों को चित पर न धरो, क्योंकि कहा जाता है कि एज यू परसीव, जैसा हमारा परसेप्शन होगा वैसा ही यू विल अचीव इन लाइफ। एज यू परसीव सो शैल यू अचीव, माना जीवन में वही आप प्राप्त करेंगे। इसको हम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा शब्द कहते हैं कि इट्स अ क्या कहेंगे, परसेप्शन की जो थियरी है कि वी ऑलवेज परसीव आवर ओन वीकनेसेस इन अदर्स। हमारी ही अपनी जो वीकनेसेस का परसेप्शन है हम दूसरों के अंदर देखते हैं, इसीलिए जब भी आपको किसी की बुराई अगर नजर आए भी तो उसको पीछे डाल देना, उसको चित पर न धरना। भगवान के सामने प्रार्थना गाते हैं ना, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, गाते हैं कि नहीं, तो भगवान को हम कहते हैं मेरे अवगुण चित न धरो, और हम दूसरे के अवगुण चित धरेंगे, क्या करेंगे। हमें भी अवगुणों को चित पर न धरना है, और न धर के उसको पीछे डाल दो, यानी देखते हुए नहीं देखो, उसको वैल्यू नहीं दो, उसको महत्व नहीं दो, उसको पीछे डाल दो, इग्नोर करो, और जो अच्छाई है उसको वैल्यू करो, उसको सामने रखो, तो हमारे जीवन के अंदर भी वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। ये है दृष्टि की स्वच्छता। तो दृष्टि की स्वच्छता माना हर एक की अच्छाई नजर आए। उसके बाद भावनाओं की स्वच्छता। जहां भावनाओं की स्वच्छता होती है वहां गुड फीलिंग्स, शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस, सभी के प्रति गुड विशेस, जितना ये एनर्जी फ्लो होंगी ये भावनाओं की स्वच्छता है। उसके बाद वृत्ति की स्वच्छता। वृत्ति की स्वच्छता माना वृत्ति के अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और जिस कारण वो वृत्ति स्पिरिचुअल हो जाती है, रूहानी वृत्ति हो जाती है, सबको आत्मभाव से देखने का हम अभ्यास आरंभ करते हैं, तो ये है वृत्ति की स्वच्छता। और उसके बाद स्वभाव की स्वच्छता माना जिस स्वभाव के अंदर इजी नेचर मोल्ड हो जाए, सरल नेचर हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो हमारे नेचर के अंदर, जितना नेचर इजी होगा सबके साथ मिक्स हो जाएगा। ये है स्वभाव की स्वच्छता। और लास्ट में संबंधों की स्वच्छता, कि जहां हम इन गुणों के आधार से अगर व्यवहार में आएंगे तो जरूर है कि वो व्यवहार, वो संबंधों के अंदर संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट की प्राप्ति होगी। और तब हमारे चेहरे के ऊपर क्या दिखाई देगा, वो चेहरा कैसे होगा? जहां ये सब स्वच्छता है तो वो चेहरा कैसे होगा? वो चेहरा प्रसन्न, सदा खुश, खुश नमः चेहरा, खुशी जीवन के अंदर इस तरह से व्याप्त हो जाती है। और तब हम हरेक के साथ इतना हल्के होकर के जीवन के अंदर चलेंगे, ऐसा महसूस करेंगे चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं, इतना हल्का हम अपने नेचर में होंगे। तो स्वच्छता के कितने रूप है, कितने स्वरूप है, और ये सारे स्वरूप अगर जीवन में ले आए तो इसी का नाम तो ब्यूटी है, यही तो सुंदरता है। अगर ये सुंदरता ही न हो जीवन के अंदर तो वो जीवन क्या फायदा? वो जीवन हमेशा उदासी, शिकायतों, क्रोध, जेलसी, हेट्रेड, उसी से भर जाता है। तो रियल ब्यूटी समाप्त हो जाती, आंतरिक सुंदरता, स्वच्छता के ये विभिन्न स्वरूप के आधार पर हमारे जीवन में आने लगती है। और वो जीवन तब इतना सुंदर हो जाता है। आज जिन देवी देवताओं के पास हम जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? है तो हमारे जैसे मनुष्य ही, गृहस्थ धर्म में है, फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? तो कहते हैं उनके अंदर यही तो ब्यूटी थी, रियल ब्यूटी थी। और यही रियल ब्यूटी इन गुणों की उनके चेहरे से, उनके हर फीचर से छलकती है, है ना? इसीलिए आप देखेंगे कि जब कलयुग के मनुष्य भगवान के मंदिर में जाएंगे ना, कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे? नारियल जरूर तोड़ेंगे, नारियल तोड़ते हैं ना, और आधा नारियल चढ़ाते हैं, आधा नारियल ले आते हैं बांटने के लिए। अब वो नारियल क्यों तोड़ते हैं पता है? वास्तव में ये सारी स्वच्छता या ये रियल ब्यूटी को लाने के लिए अभिमान का नारियल तोड़ना पड़ेगा। नारियल जो है ना, बाहर से इतना सख्त होता है और अंदर से नरम कोमल। नारियल पानी सबसे अच्छा पानी दुनिया के अंदर अगर है, बिस्लरी से भी अच्छा, तो कौन सा पानी? बेस्ट प्योर वाटर जिसको कहा जाए, नारियल पानी है। लेकिन वो नारियल पानी को प्राप्त करना है तो नारियल को तोड़ना जरूरी है। हमारे भीतर भी इतनी सुंदरता है लेकिन वो हार्ड कवर में आ गई है। हार्ड कवर कौन सा है? ईगो। ईगो का हार्ड कवर आ गया है, इसलिए ये ईगो को तोड़ना जरूरी है। जब ईगो टूटता है तो अंदर की सुंदरता बाहर आती है, है ना? लेकिन ये ईगो तोड़ नहीं पाए, इसलिए जाकर के क्या किया, देवताओं के आगे वो नारियल तोड़ दिया, तोड़ करके आधा चढ़ा दिया, आधा सबको बांटना है करके ले आए प्रसाद के रूप में। भावार्थ ये है कि हमारा ईगो जब टूटेगा तो अंदर की सुंदरता बाहर आएगी, उसी को ईश्वर के आगे अर्पण करना है और सबको प्रसाद के रूप में ये स्वच्छता के विभिन्न स्वरूप से उसको बांट करके प्रसाद के रूप में अनेकों को देना है। तो आज के बाद ये नारियल टूटेगा या नहीं टूटेगा? नारियल टूटेगा? तो यहां से नारियल तोड़ के जाना। सही स्वरूप में भगवान के घर में आए हैं तो नारियल, अहंकार का ये नारियल जितना टूटेगा तो अंदर की सुंदरता, अंदर की स्वच्छता, रियल ब्यूटी बाहर आएगी। और तब हमारा कर्म, व्यवहार, संबंध सब कुछ इतना सुंदर, सुलझा हुआ महसूस होगा। नहीं तो इतना उलझा हुआ जो आज महसूस हो रहा है, वो उलझन और कंटिन्यू होती जाएंगी, यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ आए हैं कम से कम इतना तो फायदा होना चाहिए कि हमारे जीवन को हम ऐसा सुलझा के जाए इन क्वालिटीज से। और ये एक प्रथम कदम है स्वच्छता का, जिसको लेकर के अगर चलेंगे तो जीवन हमारा बहुत सुंदर महसूस होगा। दिस इज रियल ब्यूटी। और उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तीन स्लोगन्स दिए जाते हैं। तीन स्लोगन्स आप अपने घरों में भी अवश्य लगाइए, जिससे स्मृति रहे बार बार, और स्मृति में आने से समर्थी यानी शक्तिशाली आप अनुभव करेंगे। तो ये तीन स्लोगन हम आपको स्वच्छता के विषय में देते हैं। पहला स्लोगन है, भगवान हमेशा हमें कहते हैं, नियत साफ तो मुराद हासिल। इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, इंटेंशंस जितने क्लीन है आपके, नियत जितनी साफ है, तो हर मुराद पूरी होगी। एवरी विश विल कम ट्रू, हर डिजायर आपकी पूरी होगी। लेकिन उसके लिए नियत में कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नियत साफ स्वच्छ हो। पहला स्लोगन। दूसरा स्लोगन यहां हमें दिया जाता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर दिल साफ है, सच्चा है, तो साहब यानी परमात्मा राजी हो जाता, और जिसके ऊपर भगवान राजी हो जाए उसका तो कहना ही क्या, क्या करेगा। भगवान जिस पर राजी हो जाए तो छप्पड़ फाड़ कर देना आरंभ करता है। इसलिए भगवान को अगर खुश करना चाहते हैं, भगवान को राजी करना चाहते हैं, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चाई जितनी अंदर होंगी तो ईश्वर भी राजी हो जाएगा, और जिस पर ईश्वर राजी उसके ऊपर तो वो अपनी कृपा करुणा सब कुछ बरसाना शुरू कर देता है, छप्पड़ फाड़ कर देना चालू करता है। तो चाहिए छप्पड़ फाड़ के, चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी। और तीसरा स्लोगन, ये स्लोगन अगर रखेंगे ना आप अपने सामने अपने घरों में लिख करके, तो शायद इतना अच्छा वातावरण, वो इतनी अच्छी एनर्जी रिलीज करता है कि बहुत सुंदर अनुभव होगा। और तीसरा स्लोगन है, सच तो बिठो नच। सिंधी स्लोगन है ये कि जहां सच्चाई होती है वहां नाचता है व्यक्ति, खुशी में नाचता है, उसको कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर है तो अंदर से जैसे डांस कर रहा है। तो ये तीन स्लोगन आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने ऑफिस टेबल पर रखिए, अपने ऑफिस के अंदर रखिए या घरों में रखिए। इतनी पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगा वो, और हर बार आपको ये बातों की स्मृति अंदर बनी रहेगी, और उसके आधार पर आपका प्रैक्टिकल जीवन बनने लगेगा और इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगी, यू विल बी डांसिंग द डांस ऑफ हैप्पीनेस। सदा आप खुशी की डांस में डांस करते रहेंगे। ये तीन स्लोगन्स अगर स्मृति में रख लिए तो द एसेंस ऑफ द होल लेक्चर ये तीन स्लोगन है, और तब जीवन हमेशा खुशियों के डांस करता हुआ महसूस करेंगे। सो डू यू वॉन्ट टू डांस दिस डांस ऑफ हैप्पीनेस? यस डेफिनेटली, है ना। और यहां से आपको यही प्राप्त होगा। हमारी बहुत बहुत शुभभावना शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, और हमेशा आप खुशी की डांस डांस करते हुए जीवन खुशी से बिताते रहो, यही शुभभावना है। इन्हीं वाणी के साथ ओम शांति।
आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी ने हमें बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमारे आज का जो टॉपिक है क्लीनलीनेस एंड ब्यूटी, उसको तीन मंत्र में संजोया, और उस तीन मंत्र के द्वारा हमारे जीवन का डांस सिखाया। तो हम सभी डांस करेंगे ना दीदी को, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके दिए हुए तीन मंत्रों के द्वारा हम अवश्य हमारे जीवन में डांस करते रहेंगे। आदरणीय